वेलकम टू बा खबर एपिसोड 15। जो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वो जनरली हम जो एपिसोड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम जीडीपी वगैरह मैक्रो इश्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं। द लास्ट एपिसोड एपिसोड 14 वाज के सूबों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है जीडीपी के अंदर। तो वी हैव स्टार्टेड टू टेक बिग मैक्रो इश्यूज एंड गेट मोर एंड मोर डीपर इन टू देम ऑन द प्रोविंशियल लेवल एज वेल। लेकिन जो जनरल डिस्कशन हो रही होती है हमारी, वो ये हो रही होती है कि जो मुल्क की तरक्की है, जो नशो नुमा है, उस वो सिर्फ इस चीज पे मबनी नहीं हो सकती कि मईशत का क्या हाल है और क्या हो रहा है मईशत के साथ, क्योंकि 23 करोड़ पाकिस्तानियों के जहन व जिस्म की जो नशो नुमा है वो वाकई क्या हो रही है या नहीं हो रही है। सो वन ऑफ द मेजर्स वाज के एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, द लेट डॉक्टर महबूल हक, हु इज ऑल्सो सरप्राइजिंगली द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। He worked extensively on this. He pioneered the concept of human development, and his work, along with the work of a Nobel Prize winner, an Indian economist by the name of Amartya Sen, his work on human capabilities led to something that is called the Human Development Index, which is published by the UNDP, which is the United Nations Development Program, since 1990. So, takriban 30 saal ho gaye hain isko publish hote hote. So, index karta kya hai? Index jo hai, wo ek summary, ek statistic. Waise to report mein bahut saari cheezein hoti hain. लेकिन इट गिव्स यू अ स्टैटिस्टिक, अ मेजर ऑफ यू एवरेज अचीवमेंट ऑन सम की डायमेंशंस अदर देन जस्ट इनकम। सो इट्स अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, इट्स अबाउट द योर पॉपुलेंस बीइंग नॉलेजेबल एंड हैविंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो हेल्थ के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, व्हिच मींस कि कितने साल इंसान जिंदा रहेगा, फॉर एजुकेशन के कितने साल वो स्कूल में होगा, सो इयर्स ऑफ स्कूलिंग, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए इट टेक्स द पर कैपिटा इनकम। What is so different about this? इसके अगर आप कतर को देख लें तो GNI जो नेशनल इनकम पर कैपिटा है उसकी, वो कम्स इन द टॉप 5। बट अगर आप HDI पे उसको देखेंगे तो तकरीबन वो 45 से 50 पे आता है। इसी तरीके से आयरलैंड इनकम पे आई थिंक इज 9th और 10th, बट ऑन द HDI इट्स 2nd। सो देर इज डिस्पैरिटी इन दिस, विच वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट देर इज मोर टू डेवलपमेंट देन जस्ट इनकम। एंड इवन दिस इनकम, दिस इंडेक्स इज बाई नो मीन्स द फाइनल और कम्प्लीट मेजर, but it's brought us to a conversation ki yaar solely focusing on income as progress is incomplete and limiting. So we're now expanding the breadth of our definitions, expanding our conversations, and in expanding on our conversations and our thinking on development, we have with us once again Faiz, the faithful soldier, jisne kafi kaam kiya hua hai is pe, jisne kafi reading ki hui, he's published a lot of things there. So what we need to understand, what we want Faiz, we would want Faiz to help explain ke Pakistan ki situation, Pakistan ki ranking HDI mein kaisi hai, aur provinces, how are they faring in terms of HDI?
Thanks a lot, Sanin. This will be interesting, iske baare mein baat karna. Maine abhi jaise overview aap de rahe the, mujhe ek cheez yaad aayi ki jab maine macro Pakistani shuru kiya tha, and I started writing about the economy aur GDP ke bahut baat karta tha, main aur GDP ke concepts explain karta tha. जब एकदम से फिर मैंने उसको ट्रांजिशन करा, आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हेल्थ और बाकी थोड़ी बहुत चीजें, आई एक्चुअली गॉट अ फ्यू रिस्पॉन्सेज फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू अनसब्सक्राइब देम, कि उन्होंने बोला हमने ये सब्सक्राइब किया था टू यू नो लर्न मोर अबाउट द इकोनॉमी और हमें रोजमर्रा के यू नो हमें प्राइसेस के बारे में पता करना है एक्सेट्रा, हमें ये हेल्थ एजुकेशन की डिटेल्स इतनी नहीं चाहिए, राइट? एंड टू दैट आई वाज लाइक इतना ज्यादा लिंक है दोनों चीजों का, ke they like, so I explained to them and I forced them not to unsubscribe, ke you know there is a definite link between health, education, income and all the other development metrics. Aaj hum mere khayal se in teen cheezon ke bare mein baat karenge, lekin bahut bahut zaruri hai ye link samajhna bhi, right? Wo causal link ho sakta hai na ho, lekin there is definitely a link between these metrics. So is HDI se shuru karte hain. So like you know, great introduction aapne explain kar diya ki index hota kya hai. Pakistan isi jo ranking mein jo hai koi 154th pe aata hai, theek hai? Iski agar aap details dekhenge to aap medium level of human development pe aata hai ye. Index mein jo hai 0.55 se upar medium development hota hai, usse upar hame sochne ki zarurat bhi nahi hai kyunki hum uske kareeb bhi nahi hai. उससे 0.55 से नीचे लो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। तो अब जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी सिंध अर्बन की, और सिंध अर्बन लो मिडिल इनकम कंट्री जितना उसकी बेसिकली पर कैपिटा इनकम है, विच इज वन एस्पेक्ट ऑफ HDI। अगर आप बाकी एस्पेक्ट लेकर आएंगे तो बेसिकली सिंध अर्बन की रैंकिंग होगी बांग्लादेश जैसी, राइट, अराउंड वन, हाँ इंडिया जैसी होगी एक्चुअली, 131 रैंक होगा इंडिया का, उसके साथ ही सिंध अर्बन आएगा। पंजाब जो है बांग्लादेश जैसा होगा, थोड़ा सा नीचे 133rd पे। तो ये दो जो है बेसिकली, अगर आप देखें पाकिस्तान को अगर स्प्लिट करें हम इनटू कंट्रीज और सिंध अर्बन का लेवल देखें, उसका जो आउटपुट निकलती है टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम एजुकेशन एंड हेल्थ, वो इंडिया जैसा होगा। पंजाब जो होगा वो अर्बन जो है वो बांग्लादेश जैसा होगा। दिस विच इज वेल एंड गुड, चले सही है, मतलब यू नो योर आपका कंपेरेबल इनकम और कंपेरेबल ह्यूमन डेवलपमेंट मेक सेंस विद योर साउथ एशियन नेबर्स। लेकिन जब आप रूरल एरियाज में आते हैं ना, अगर ये हम चार्ट वापस लगा देंगे, यू विल सी कि आपकी एक तो इनकम लेवल्स और ये जो मेट्रिक्स हैं एजुकेशन और HDI के, दे मैटर अ लॉट। सो आपको देखेगा कि जैसे ही आपका एक साइज ऑफ द बबल इंक्रीजेस विच इज इनकम, यू विल सी यू हैव अ हायर HDI रैंक, ठीक है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक बढ़ेगा एज लॉन्ग एज यू हैव हायर इनकम। साथ में आपकी लिटरेसी या एजुकेशन की अगर बहुत ही बेसिक एक मेट्रिक ले लें, लिटरेसी वो भी बढ़ती है एज इनकम गोस अप। बट रूरल, आप पूरा रूरल पाकिस्तान अगर देखें, पूरा का पूरा है लो ह्यूमन डेवलपमेंट में, विच मीन्स हैव अ रेटिंग ऑफ लेस देन 0.55। इट्स हमें कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैसेज बीइंग रूरल एरियाज ऑल लो ह्यूमन डेवलपमेंट, सिंध अर्बन इज एक्चुअली सेकेंड लास्ट, सिंध रूरल, सॉरी, तो सिंध रूरल हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सिंध रूरल एक्चुअली हैज द हाईएस्ट इनकम पर कैपिटा ऑफ ऑल रूरल एरियाज इन पाकिस्तान, ठीक है, पैसा सबसे ज्यादा है रूरल एरियाज में और ह्यूमन डेवलपमेंट सेकेंड लास्ट है, राइट अबव बलूचिस्तान एक्चुअली। बलूचिस्तान की अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही एंड में उनकी रैंकिंग आएगी, अगर बलूचिस्तान रूरल को हम सिर्फ कंपेयर करें तो वो 183rd रैंकिंग होगी, only above Burundi and Mali, मतलब दो African countries से ऊपर सिर्फ उसकी ranking आएगी, इतनी बुरी हालत है in terms of human development over there. Sindh would be जो rural है would be with Ethiopia at 173rd, right? ये numbers मतलब इतने याद नहीं रहते, लेकिन comparisons याद रहते हैं। इसमें एक जो मैं बस छोटी सी बात करूंगी, HDI का measure जरूरी पता है इसलिए है, आपने आयरलैंड की बात करी, आपने कतर की बात करी, तो जब आप सारी डेटा साथ में लेते हैं ना, तो आप देखते हैं अच्छा एट अ सर्टेन इनकम लेवल आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, राइट, और अगर अच्छी नहीं है तो क्यों अच्छी नहीं है, और हाउ डू यू ब्रिंग इट अप टू योर पीयर लेवल। अगर आपकी कतर की फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाएंगे कैसे, इसी तरह सिंध की अगर आप देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने बोला इथियोपिया जैसी है रूरल एरियाज में, बट इनकम लेवल्स जो है सिंध और रूरल के डबल है इथियोपिया से, राइट, ज्यादा जगहों में ये बोलने को नहीं मिलता कि पाकिस्तान डबल है दूसरे कंट्री से कहीं ना कहीं, बट सिंध रूरल की जो इनकम पर कैपिटा है वो कोई 4400 डॉलर्स की है, इथियोपिया में वही चीज 2200 के करीब है, सो एक्चुअली डबल सिंध रूरल में है और सेम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। आई थिंक दैट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग इन ऑल ऑफ दिस, कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट और इनकम को कंपेयर करना शुरू करें। एक इसमें आखिरी बात जो मैं करूंगा वो ये है कि हमने पहले ट्रेड की जब हम बात करें तो उसमें कंपेरेटिवनेस इंडेक्स की बात करी थी, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें हमारी रैंकिंग जो है कोई 110th आउट ऑफ 141 है, राइट। मैं ये लाना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लिंक समझें बाकी जो सारी इंडिसीज हैं और सारे चीजों की, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ट्रेड में भी हेल्थ और स्किल्स फॉर एग्जाम्पल डू मैटर in your ranking when that takes into account, to get competitiveness dekhte ho, aap dekhte ho labor force kaisi hai Pakistan ki, uski quality kaisi hai, to skills mein hamara jo rank hai kuch 125th aata hai, jab Bangladesh, India, Vietnam sab humse aage us ranking mein. In health as well, hum log koi 115th pe aate hain out of 141 countries, Bangladesh is at 93rd. To sab itne acche nahi hai, lekin Pakistan se behtar hai har jagah, right? Hamari life expectancy, agar main sirf health ki baat karu, 67 years of age hai, right? So, and a person being born in Pakistan is expected to live 67 years of age. Wohi, that same person if born in Bangladesh, uski koi 73 years of age ke kareeb hoga. India bhi koi 70 ke kareeb hai. So, har metric mein main aankhein band karke basically bol sakta hoon ki aap apne peer countries se jab compare karna shuru karenge, to aap dekhenge ki Pakistan has lower levels of human development.
सर, जो आपने एंड में बात की वो बड़ी अच्छी was a good way to think about things ki yaar hum filhal compare jo kar rahe hain wo peer countries se kar rahe hain jo comparison mein hamare fit bhi hota hai ye nahi hum bol rahe hain ki yaar america se compare kar lo japan se compare kar lo ya you know uk and australia se compare kar lo within your peer countries so humne kafi baat ki hai gdp ki gross national income ki gni ki income specific to hum log kafi discuss kiye but in terms of the other variables jo hai education jo hai health mein jo hai उसमें पाकिस्तान की क्या स्पेसिफिक जो है सिचुएशन है एंड वेयर डू वी रैंक
बिल्कुल तो लिटरेसी रेट मतलब ज्यादातर लोग अब इतना कंपेयर नहीं करते बिकॉज लिटरेसी ऐसा आपको कुछ बताते नहीं है आपको देखना है कि आपकी लेबर फोर्स में हुनर कितना है स्किल कितनी है और यू नो इयर्स ऑफ स्कूलिंग भी आपने जैसे बात करी इवन फर्दर देन दैट एजुकेशन क्वालिटी हमें देखनी चाहिए कि हमारी आउटकम्स कैसी हैं एजुकेशन की ठीक है सो वर्ल्ड बैंक ने एक अब रिलीज करना शुरू करा है इट्स कॉल्ड हार्मोनाइज्ड लर्निंग आउटकम्स एचएलओ के नाम से ठीक है तो उसमें भी सेम अगर मैं करूं मैं इनकम लेवल्स सारे कंट्रीज की देखूं और उनको एचएलओ जो आउटकम्स हैं वो मैच करूं तो आप देखेंगे एक सीधी लाइन होगी उसके नीचे जो है उस लाइन के नीचे आपको बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्क देखेंगे विच मीन्स के इन सब में एजुकेशन क्वालिटी इज बिलो देयर इनकम लेवल्स ठीक है But at the same time, you will see Pakistan सबसे नीचे, right? तो हमारा harmonized learning outcomes, which means कि आपकी quality of education कैसी है, आपके students कैसे perform कर रहे हैं, is worse than Bangladesh and India at least. Interestingly, you are worse than Afghanistan. ठीक है, Afghanistan low middle income country नहीं, low developed countries में आते हैं, so बिल्कुल ही LDC कहलाते हैं वो, हमारी उनसे भी बुरी education quality output है. तो आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि आगे जाके हमारे मसले क्यों होते हैं राइट हमारी अगर लेबर फोर्स हम बोलते रहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत यंग पॉपुलेशन है अगर वो यंग पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है इफ दे कैन नॉट गेट स्किल्ड जॉब्स इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर वो डिविडेंड नहीं वो सिर्फ जस्ट बिकम अ डेमोग्राफिक बॉम्ब के आपको यू विल जस्ट हैव टू सपोर्ट अ लॉट ऑफ अनस्किल्ड लेबर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इस तरह अगर स्किल्ड जॉब सिर्फ डेवलप हो रही होंगी पाकिस्तान में लोड्स टू थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्पेसिफिकली एजुकेशन इन पाकिस्तान ठीक है वियतनाम की हमने ट्रेड में इतनी बात करी है उनकी एजुकेशन अगर आप क्वालिटी कंपेयर करना शुरू करें आप अभी बोल रहे थे ना मैं पाकिस्तान को यूएस से कंपेयर नहीं कर रहा वियतनाम भी इनकम लेवल आप कंपेयर नहीं कर सकते यूएस से या ऑस्ट्रेलिया से एजुकेशन आउटकम्स आप कंपेयर कर सकते हैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया से तो अगेन कंप्लीट आउटलायर वियतनाम ऊपर बैठा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आउटपुट रैंकिंग और आप देखेंगे इनकम लेवल्स तो कहीं से नहीं उनके क्लोज टू यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया बट एजुकेशनल आउटकम्स आर अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज के एज यू गेट रिच Your educational outcomes improve. ये पाकिस्तानी डेटा की मैं बात कर रहा हूँ अगर आप क्विंटाइल्स के हिसाब से देखें तो richer households have better access to education, तो उनकी education outcomes भी बेहतर होती हैं इससे क्या होता है आपका inequality का cycle जो है perpetuate होता है perpetuate का मतलब क्या मतलब वो इस साल इतना है अगले साल और ज्यादा होगा उसके अगले साल और ज्यादा होगा क्योंकि यही if you are educated आपकी access to job opportunities बेहतर होंगी फ्यूचर में वही फिर आपके बच्चों को भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपके बेसिकली एक नीश बस बन जाएगा जो बिकॉज यू हैव बेटर एक्सेस टू एजुकेशन प्रोविंशियल ब्रेकअप भी लोगों को थोड़ा जनरली पसंद है आपने बात की थी इयर्स ऑफ स्कूलिंग की तो इसी एचडीआई रैंक को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो इयर्स ऑफ स्कूलिंग बेसिकली इसका मतलब होता है कि ऑन एवरेज कितना एक्सपेक्टेड है इफ अ पर्सन इज एंटरिंग स्कूल के वो कितना लंबा स्कूल में रहेगा हमारे ड्रॉप आउट रेट्स जनरली काफी हाई है तो 6.7 years expected है पाकिस्तान में रहना पंजाब में कोई 7 साल है तो लाइक ओवरऑल पाकिस्तान 6.7 होगा पंजाब में सबसे बेहतर है अराउंड 7 सिंध इज अराउंड 6.5 केपी उससे थोड़ा कम है 6.3ish बलूचिस्तान में 5 साल से भी कम है राइट तो व्हाई आई ब्रिंग इट बैक टू दिस इज हमने पिछली दफा बात की थी कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट स्टैग्नेंट हुई हुई है राइट इन टर्म्स ऑफ इनकम एज वेल अब हमने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी बलूचिस्तान रूरल में और बलूचिस्तान अर्बन में सबसे कम है एजुकेशन में भी सबसे कम है अब सबसे कम होगा तो फ्यूचर में क्या होगा दैट इट विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं होगी फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं होगी तो वापस एजुकेशन नहीं होगी तभी आई थिंक ओवरऑल इन सारे मेट्रिक्स को देखना बहुत जरूरी है फॉर द स्टेट एज वेल, गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए. स्पेशल प्रोग्राम्स शुरू तो हो रहे हैं अपेरेंटली बलोचिस्तान के लिए, बट इट नीड टू बी एक्सपेडाइटेड टू सी कि इसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, वरना लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोविंसेस विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग.
So you spoke of a very good thing ke jab in variables ko hum nahi dekh rahe honge, jab education mein investment nahi ho rahi hai, jab actual literacy, not the fact that you can sign on something or whatever, but educated, a definition of literacy is not reached, so the demographic dividend jo hai wo baki jaake it might turn into a demographic liability. Jo what you ended on was a very important topic in my estimation, is ke inequality jo hai jiske upar aapne pehle baat ki hui hai, इसके जब प्रोग्रेस होती है, when the GDP is, for example, rising, that there is more progress in income-wise, it could also come at the cost of a certain ethnic class or a certain socio-economic class, a particular gender. There could be province, there could be development, or there could be progress in particular provinces, one or two provinces. तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे पैसा आता है वो equally distributed होके हर किसी को उतना ही जो है वो uplift करेगा. So that becomes a very important topic to consider, ki inequality ki jo surat-e-haal hai Pakistan mein, wo kya hai, especially in income inequality. So if you could give us your insight on that.
Great. So humne pehle baat kar chuki hai meri strong capitalist tendencies hai, theek hai. So in terms of growth, main bolta ha bas, you know, capitalism is the best way to go. Pakistan mein bhi agar aap dekhe, and interestingly, so let me, before that, तो चाइना का जो मॉडल था ना, और चाइना के एक बहुत स्पेशल एक लीडर ने एक बोल दिया था कि अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स. इसका मतलब जब आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी ना, तो सबके सब साथ में ऊपर जाएंगे. इफ द रिच मेक मनी इट्स फाइन, इवेंचुअली वो लोगों को हायर करेंगे, उनकी भी फिर लाइवलीहुड बढ़ेगा, उनकी भी तरक्की होगी, उनकी भी प्रॉस्पेरिटी होगी, ठीक है. तो ये एक बेसिक उसका मॉडल शुरू हुआ था. ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स भी कभी कभार बोलते हैं कि आप ऊपर से शुरू करेंगे तो वो नीचे तक प्रॉस्पेरिटी ट्रिकल डाउन हो ही जाएगी. तो पाकिस्तान के केस में जनरली आई वुड से दिस हैज बीन द केस, मतलब आई डोंट हैव कॉन्क्रीट डेटा ऑन इट. मैं पिछले 30 साल की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे हमारे तीन डिस्टिंक्ट पीरियड्स हैं. एंड अगेन, नॉट टू मेक दिस पॉलिटिकल, मैं सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स की अगर थोड़ी सी बात करूं कि उस वक्त, तो अगर आप थ्री जो डिस्टिंक्ट फेजेस आप देखेंगे, 1990s में आपकी इनइक्वालिटी स्टेबल थी, सही थी. सब इनइक्वालिटी पर ऐसे आई एम डिफाइनिंग इट बाय द पैल्मर रेशियो. पैल्मर रेशियो क्या होता है कि हमने क्विंटाइल्स की बात करी है, टॉप 20% बॉटम 20% पाकिस्तान में इनकम अर्नर्स. अगर आप ले लें, आप उनका डिफरेंस देखें, रेशियो देखें, कि अगर फॉर एग्जाम्पल हाइस्ट इनकम अर्नर जो है 100 रुपए कमा रहा है, तो लोएस्ट इनकम अर्नर जो टॉप बॉटम 20% में है वो कितना इनकम कमा रहे होंगे. तो ये जो रेशियो है इसको पैल्मर रेशियो बोलते हैं. तो अगर मैं सिर्फ उसमें देखूं, आपको नंबर देखना शुरू करूं, सो यू विल सी कि 1990s में सही था, नीचे जा रहा था जो ये रेशियो है, 5 से 4 तक गया, फिर 5 के अराउंड ही रहा. फिर मुशरफ के एरा में, तो 2000 onwards 2008, अगर आप वो ये नंबर देखेंगे तो वो यही कोई 4-5 से ऊपर गया, 6 से ज्यादा ये रेशियो, राइट. विच मीन्स द रिचेस्ट 20% ऑफ द कंट्री वर मेकिंग मोर देन 6 times व्हाट द लोएस्ट 20% ऑफ द कंट्री वर मेकिंग. ये बहुत सिंपल रेशियो है, और कॉम्प्लिकेटेड रेशियोज भी होते हैं जिनकी हम बात इवेंचुअली कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसी रेशियो को हम देखते हैं. और फिर जाके एज सून एज द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट एंडेड, आपकी डेमोक्रेसी वापस आई, डेमोक्रेसी इलेक्टेड ऑफिशियल जैसे आए, तो ये रेशियो कम होना शुरू हो गया, ठीक है. अब ये इत्तेफाक की बात नहीं है, बिकॉज थिंक अबाउट हाउ, हम वैसे गालियां जितनी देने को चाहे दे सकते हैं पोलिटिकल पार्टीज को, एक चीज तो है ट्रेंड कि डेमोक्रेसी में आपकी इनइक्वालिटी कम होती है. आई डोंट नो व्हाट हैज चेंज्ड इन द लास्ट 2 years, बिकॉज़ ये डेटा मैं 2018-19 तक का दिखा रहा हूँ. कोविड से फर्क पड़ा होगा इसको डेफिनेटली, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपका एलीट कैप्चर और रेंट सीकिंग जो है कम हो जाती है ड्यूरिंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टाइम. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में ये ज्यादा बढ़ जाता है. अब ये क्यों होता है? एक चीज है पाकिस्तान की, जब जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, आपकी इनइक्वालिटी बढ़ती है पाकिस्तान में, ठीक है. जस्ट बिकॉज मैंने जैसे बोला, वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स डजंट रियली वर्क. फिर दूसरी बात, की जीडीपी ग्रोथ, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करी है, इफ इट्स ऑन द बैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें जॉब क्रिएशन लो स्किल के लिए इतनी ज्यादा नहीं होती, राइट? तो अगर हाई स्किल जॉब क्रिएशन होती है उसमें लो स्किल लेबर जो है वो पीछे रह जाता है और फिर निचला तबका बेसिकली उतनी इनकम नहीं गेन कर पाता. सो ये दूसरा रीजन होता है. तीसरा रीजन विच शुड बी क्लोजेस्ट टू योर हार्ट इन्वेस्टर्स लाउंज इज के हमारी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी कम जो है, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन इतनी कम जो है. जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो सिर्फ ओनली द रिच बेनिफिट, बिकॉज सिर्फ वही है जो स्टॉक मार्केट में खेल रहे हैं. जो निचले तबके वाले हैं वो इतने स्टॉक मार्केट में नहीं है. तो अगर स्टॉक मार्केट की वैल्यू ऊपर जा रही है, सारे जो कैपिटल गेन्स हैं वो रिचेस्ट 20% को जा रहे हैं. तो GDP डज वेल, स्टॉक मार्केट इवेंचुअली डज वेल. When the stock market does well, only the top 20% benefit. So, इसलिए आपकी inequality और बढ़ती है. Lastly, Musharraf was also pro-business. आप हमने taxation की बात भी की है पाकिस्तान में. So, जब direct taxes कम होते हैं, तो फिर again inequality goes up because Pakistan has a regressive taxation regime. Regressive का मतलब हमारे indirect tax जो होता है, sales tax आप लोग pay करते हैं ज़्यादातर, उस तरीके के जो taxes हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो वैसे ही रहते हैं. और डायरेक्ट टैक्सेस अगर कम हो जाते हैं, वो सिर्फ जो डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, इनकम टैक्सेस पे करते हैं, उनको ही अक्रू उसका बेनिफिट करता है. एंड द टॉप 20% अगेन डू बेटर. ऑल ऑफ दिस शुड मेक सेंस. मतलब जब मैं एक दफा, मैंने भी जब सबसे पहले ये चीजें पढ़ी थी, मैंने बोला था यार इंडस्ट्रियलाइजेशन बुरी कैसे हो सकती है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाना बुरा कैसे हो सकता है, टैक्सेस कम होना बुरे कैसे हो सकते हैं. बट आई वुडंट से जनरली बुरे हैं, बट जिस तरीके से पाकिस्तान का वो है एक पूरा इकोसिस्टम है वो हम, और हमने काफी चीजों की अभी तक बात करी है, उन सबको हम साथ लेके चलते हैं. तो इस तरीके की ग्रोथ से जो कि अभी मुझे वापस लग रहा है आ रही है, जनरली आपकी इनइक्वालिटी बढ़ती है.
सो इससे ज्यादा जो है ना, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी जो है अगर पॉलिटिकल कोई भी कमेंट्री देगा तो इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता, विच आई एग्री विद व्हाट ही इज डूइंग. बट अदरवाइज अगर उसने वाकई बोलना शुरू कर दिया कि ये इस गवर्नमेंट ये हुआ था, इस गवर्नमेंट में हुआ था, ये पूरा शो जो है, the things people take back from this show is कि यार ये मेरे पास है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, मेरे पास है पीके, so the entire show, the purpose of the show will be hijacked. So I agree with Faiz there, but I salute his the line that he's treading. जो स्टॉक मार्केट की बात की वो बहुत अच्छी बात की. आई थिंक बिफोर द शो when we started off, मेरी और फैज की बिफोर वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग वही बात हो रही थी कि वियतनाम जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, उसने इन इस साल के पहले 3 महीने में जो है तकरीबन 270,000 स्टॉक मार्केट के अकाउंट्स खोले, मोस्टली इज यंग पीपल. हम उस लेवल तक, हम 2.5 लाख पे खड़े हैं पिछले 70 साल. 70 साल हमें लगे 2.5 लाख अकाउंट्स पर पहुंचने के लिए, विच इज इनक्रेडिबली कंपेरिजन इज इनसेन. बट यही एक तरीके का आ रहा है कि द मोर पार्टिसिपेशन बाय मोर पीपल वुड प्रोबेबली बेनिफिट मोर, पर पाकिस्तान स्टिल स्टैंड्स अबाउट 0.2% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन. होपफुली वी विल बी एबल टू डू समथिंग एल्स एज वेल. आई थिंक बोथ द स्टार्टअप्स आर ट्राइंग टू डू, वन इज ऑन द इकोनॉमिक्स बाइट साइज कॉन्टेंट फ्रंट, के यार इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में समझ में आ जाए, दूसरा स्टॉक मार्केट समझ में आ जाए. होपफुली फिर एबल टू डू जॉब वील आर जॉब्स वेल, तो थोड़ा सा और इसके अंदर इजाफा कर सकेंगे. Inequality पे आपने बात की फैज. I remember you were discussing with me कि there are ये key trends, key relationships पाए गए हैं on effect of on inequality, especially in Pakistan. But you'd also mentioned a couple of findings by the UNDP के drivers और को किस किस्म के हैं जो inequality को further perpetuate या increase कर रहे होते हैं. So you could maybe speak about that.
बिल्कुल, ये मैंने पैलमर रेशियो की बात करी टॉप 20% और बॉटम 20% की, इसके पीछे थोड़े नंबर्स भी देते थे ताकि लोगों को और बेहतर समझ में आए. तो हमारी पाकिस्तानी एवरेज इनकम जो है ना, एवरी अर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी पाकिस्तान में पैसे कमाता है, सो नॉट पर कैपिटल इनकम, दिस इज अर्नर की इनकम कितनी होगी महाना, कोई 22,300 के करीब है, ठीक है, ऑन एवरेज. 2018-19 का डेटा मैं वापस बता रहा हूँ. उसमें जो सबसे निचला तबका है, द बॉटम 20%, उसकी है कोई 10,600 महाना इनकम, विच इज बिलो मिनिमम वेज बाय द वे. तो आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कि मिनिमम वेज हर अर्नर को नहीं मिल रही होगी इधर. एक्चुअली ऑल द वे टिल द थर्ड क्विंटाइल आपको, सो बॉटम 60% को मिनिमम वेज नहीं मिलती, जो थर्ड क्विंटाइल है उसको भी 16,000 समथिंग इनकम है उनकी. अच्छा, मैं हाउस होल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं अर्नर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है. बिकॉज जैसे आप एक और डेटा पॉइंट देखेंगे कि घरों में जितने लोग काम करते हैं, तो लोएस्ट क्विंटाइल में, लो निचले तबके में ज्यादा लोग काम करते हैं, कोई 2.2 लोग काम करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट इनकम अर्नर्स हैं उसमें कोई 1.5 लोग पर हाउसहोल्ड काम करते हैं, उसी हाउसहोल्ड में इनकम भी ज्यादा है, सो इंडिविजुअल अर्नर जो है वो कोई 42,000 के करीब इनकम कमा रहे हैं। तो जो पैल्मा रेशियो, कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक, इसके इस 40-45,000 को 10,000 से कंपेयर करें, वो 4-4.5 का जो रेशियो है, दैट्स बेसिकली व्हाट द पैल्मा रेशियो इज। सो ये लेटेस्ट डेटा ये बोलता है। अब इसमें आप जो ब्रेकअप से हम लगा देंगे तो आप देखेंगे कि जो निचला तबका है वो वेज रिलायंट काफी है, कोई 50% के करीब उनकी इनकम जो है वो वेजेस से आती है। अब वेजेस इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरीज, सैलरीज भी बिजनेस और सर्विस सेक्टर से जो सैलरीज आती हैं वो थोड़ा सा कंपोनेंट है, फिर थोड़ा सा एग्रीकल्चर का कंपोनेंट आ जाएगा, लाइफ स्टॉक, क्रॉप प्रोडक्शन एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी इनकम निचले तबके को बिल्कुल भी इतनी नहीं मिलती, रेमिटेंसेस से बेनिफिट मिलता है और थोड़ा बहुत सोशल सपोर्ट, गिफ्ट्स वगैरह, ये आपका इनकम ब्रेकअप होता है। तो इस ब्रेकअप को कंपेयर करने में जो यूएनडीपी ने एनालिसिस किया था उसमें ये था, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी क्योंकि मैंने ये वाला डेटा पहले नहीं देखा था, बिकॉज मैं देखता हूँ जनरली परसेंटेज टर्म्स में, अच्छा कि इनकम ब्रेकअप कितना है, रेमिटेंस कितना आ रहा है, अच्छा सही है 9% आ रहा है, 6% ऑफ योर टोटल इनकम इज रेमिटेंसेस, मेक सेंस। लेकिन आप एट अ माइक्रो लेवल ये डेटा देखना शुरू करें कि एक वन पर्सन इन द लोएस्ट क्विंटाइल उसको कितना रेमिटेंस मिल रहा है कंपेयर टू द हाईएस्ट क्विंटाइल, तो बहुत ज्यादा फर्क है। सो व्हाट द यूएनडीपी फाउंड वाज कि रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस टू बी एग्जैक्ट, आर द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, कोई जो निचला तबका है वो कोई व्हाटएवर रेमिटेंसेस गेट इज 15-16 टाइम्स लेस than what the highest income quintile, the top 20% in Pakistan get. Bahut hi startling statistic hai ye. Lekin again, go back to our conversation before ki ye perpetuate hoti hai cheeze. Ab, but, you know, I did my undergraduate in Pakistan, phir jaake main bahar gaya apne masters ke liye. सही है, मैंने एजुकेशन थोड़ी बहुत ली हुई थी तो मेरा बाहर एडमिशन हो गया, बाहर एडमिशन हुआ तो फिर मैंने उधर से थोड़ा सा कमा के वापस घर भेजना शुरू करा। यही जो साइकिल है मेरा वाला साइकिल, बाकी एंड दिस विल हैपन मोस्टली इन द टॉप 20% ऑफ द कंट्री। तो फॉरेन रेमिटेंसेस आपको इसी तरह वापस आएंगे, निचले तबके में फॉरेन रेमिटेंसेस ऐसा कुछ भी नहीं आ रहे होंगे, बहुत ही कम प्रोपोर्शन आता है ऑफ अनस्किल्ड लेबर इनकम जो है आपको जीसीसी जो आता है वो आता है। लेकिन 15-16x डिफरेंस होना बहुत ही बड़ी बात है, एंड I think we need to dig into it a bit more and see ke regions kahan pe hain, kahan pe aa raha hai, how the government can help improve in some of these areas. Lekin inequality ka ye ek bahut bada driver hai. Dusra bahut bada driver jo hai wo hai property income. Humne housing ki bhi baat kari hai ke log Protestant Pakistan mein plots khareedne ka bahut shauk hai logon ko. So dusra jo aata hai wo property income ka aata hai, wo koi 11-12 X difference aata hai. So the richest in Pakistan, the top 20% earn more than 11 times property income than the least privileged in Pakistan. So ye do unhone major highlight kare the. Baaki bhi aap dekhenge wages and salaries mein bhi masla hai. The kind of entrepreneurship you do, self-employment you do, at every level aapko inequality dekhegi, lekin foreign remittance or property income se sabse zyada dikhegi.
So अगर हम ये इस पूरी डिस्कशन को, इस कॉन्वर्सेशन को समराइज करें तो व्हाट हैव वी स्पोकन अबाउट? वी स्पोकन अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अ मोर ब्रॉडर वे ऑफ लुकिंग एट के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस एक नेशन की कैसे होती है, क्या वेरिएबल्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम फैज ने एजुकेशन की बात की कि हमारी सिचुएशन क्या है, थोड़ी बहुत हेल्थ की बात की सिचुएशन क्या है, फिर बात की कि ये तो जरूरी नहीं है कि अगर प्रोग्रेस हो रहा हो तो वो पूरे मुल्क में होमोजिनस हो, पूरे मुल्क में जो है उसी तरीके से प्रोग्रेस फील और एक्सपीरियंस हो रही हो। सो ही स्पोक अबाउट एट लेंथ अबाउट इनइक्वालिटी, क्या ड्राइवर्स हैं इनइक्वालिटी के, क्या रहा है, व्हाट इज रिसर्च शो। अब आई थिंक यू आर इन अ मच बेटर पोजीशन टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड अंडरस्टैंड दिस, बट लेट मी लीव यू विद अ स्मॉल लिटिल केस स्टडी और समथिंग टू थिंक अबाउट। कि यार अगर कोई साहब है, let's not name anybody, but कोई साहब है, वो बोलते हैं कि यार आज से मेरी हुकूमत जो है अगले 10 साल तक रहेगी, लेकिन आपको ये गुजारा नहीं है कि आप पॉलिटिकल कोई वोट आपका doesn't count. Freedom of expression doesn't count. Freedom of press doesn't count. आप चुप करके बैठे रहे, 10 साल बाद देखेंगे हम क्या बात करते हैं, मतलब कहां पे मेरी परफॉर्मेंस पहुंची है. 10 साल बाद अगर एजुकेशन और हेल्थ में इफ देयर इज एन इंक्रीज और बेटरमेंट, इज देयर एक्चुअल डेवलपमेंट, बिकॉज नाउ यू मूव बियॉन्ड इवन द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनटू थिंग्स लाइक कि इन 10 साल में उम्र बढ़ी है तो नंबर जो सांसें आपने ली हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन क्या इसमें जिंदगी बढ़ी है. Is there more political freedom? There wasn't. Is there more social mobilization? There wasn't. Was there freedom of information? There wasn't. So all of those variables also are something to think about in your conversations that you have in terms of true human development and progress. But this is a Kickstarter of sorts, something that's all been researched. 30 saal se iska data aa chuka hai. And if you go back and forth into how Dr. Amartya Sen has also spoken about this, aapko nazar aa jayega that they kept it ki yaar, GDP के at least statistics से, एक vague statistics से अब हम एक more inclusive statistics पे आ जाएं, बाकी आप report में और भी चीजें काफी देख सकते हैं. So hopefully it'll lead you to more intelligent conversations. So on that note, it's been a great episode. It's been a more light-hearted episode. I personally learned a lot more about this field from Faiz. Until next time, Allah.